All right, ladies and gentlemen, once again, welcome back, and I am very, very tired. Yet I'm here. How are you? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? I'm all right. It's one of those days, you know. Oh, there is so much that I want to talk about. There's so much that I want to talk about, but not right now. Right now, listen to this, and then उसके बाद हम बातचीत करेंगे. अभी तो ये सुनो ना. सुन लो यार. बाद में बात करते हैं. सुन लो. जाना नहीं. यहीं रहना. पक्का. Let's see if we can take phone calls. आज मूड तो मेरा नहीं है फोन कॉल्स का, लेकिन फिर भी देखते हैं. आज बहुत कुछ और है जिसके बारे में बात करनी है. नो, ऐसा कुछ नहीं जिसमें हम पॉलिटिकली कहीं चले जाएं. ऐसा कैसा कुछ नहीं है, बट जस्ट यू नो ओवरऑल काफी ज्यादा. बट लिसन टू दिस. ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक. आज मैं अपनी टीम से बात कर रहा था, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड. हमारी जो रमजान ट्रांसमिशन है वो बहुत अच्छी होगी. बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट रमजान ट्रांसमिशन, इट्स अबाउट हम जो उसमें नई नई चीजें कर रहे हैं. तो आई होप एंड प्रे कि यू गाइस आर गोइंग टू लाइक दैट, यू गाइस आर गोइंग टू एंजॉय दैट. बाकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आज पढ़ के हैरान था, बिकॉज यू नो कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वक्त जो है वो कहीं निकला जा रहा है. बट नॉनदलेस यू नो we're going to talk about all of it. हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज का शो रिलैक्स करने वाला शो है. जस्ट सिट बैक, लिसन टू इट. कहीं कहीं मुझे लगता है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा शो हो जाएगा, तो दैट्स ओके. आई थिंक इट शुड बी ऑल राइट. दूसरी बात ये कि आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है जेम्स वेब का, और वो बड़ी कमाल बात है. जब से ये जेम्स वेब यू नो लगी है, इंस्टॉल हुई है, इसने जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस हैं या यू नो एस्ट्रोनॉमी है या यू नो जैसे आप एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, उसको उसकी हैयत को चेंज कर दिया, बहुत चेंज कर दिया. स्टार्स के ओरिजिन जो हमें पहले पता थे अब वो नहीं हैं. स्टार्स की डेथ्स जो हैं, प्लैनेट के तबाह होने या उसके ओरिजिनेट होने की जो चीज़ें हैं, वो सारी थ्योरीज जो हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हो गई हैं. तो स्पेस को समझना अब पहले जैसा जो समझ हमारी एक ज़माने में थी वो अब नहीं है. सो मच सो कि जिस जो कभी जिनको हम हर इक्वेशन के अंदर कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ को मुस्तनद मान लिया जाता है और कहा जाता है कि इसके अंदर मतलब ये लगा दीजिए. अच्छा इसलिए है क्योंकि मैं बैफल्ड हो गया था ना. कुछ चीज़ों पर मैं रिसर्च क्या कर रहा था स्टडी कर रहा था, तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये तो दिस इज फिनोमेनल. तो उसने हमारी समझ को जेम्स वेब ने बिल्कुल तब्दील कर दिया है. तो इवन जो वैल्यूज जो हैं वो सर्टन नहीं रही हैं, वो उनको भी चेंज करके मुख्तलिफ नंबर्स को ट्राई किया जा रहा है और प्लग किया जा रहा है. सो मच सो कि अब एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो उभर रहा है, विच इज कॉल्ड नेगेटिव मास. तो वो वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको भी ट्राई किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि जो न्यूट्रिनोज होते हैं वो कहाँ किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं, क्या उनका डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट हो सकता है, क्या उनमें कोई फोर्स होती है, या वो सेंट्रिफ्यूगली स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो ऑल ऑफ दैट यू नो पीपल आर डिस्कसिंग, साइंटिस्ट्स आर डिस्कसिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो हम ज़मीन पे रहते हुए आसमान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली ये बात है. क्या ऐसा होगा? आई थिंक आई डोंट नो, मे बी नॉट, बट वो विल सी आगे जिंदगी कैसी है, वी डोंट नो. किसी ने ऐसी आज बात हो रही थी, किसी ने कहा कि हम मार्स में कॉलोनाइज कर सकेंगे, यानी हम मार्स में जाके रह सकेंगे, मरीख पे जाके रह सकेंगे. साइंस में ना बहुत सारी चीज़ें बहुत अजीब सी हैं. पहले एक ज़माने में ये कहा जाता था कि हम मार्स से आए हैं, हमारा ओरिजिन जो हुआ है वो मार्स से हुआ है. अच्छा मैं आई टेल यू व्हाई. वो कहा जाता ना कि जमीन एक पहले गोला थी आग का, फिर वो ठंडा हुई एंड ऑल दैट. हम अगर आप हमारे निज़ाम शमसी को देखें, हमारे सोलर सिस्टम को देखें, तो जिस जगह इस वक्त मार्स लोकेटेड है यू नो ये वो जगह है जो मार्स की पहले नहीं थी, बल्कि मार्स की वो जगह थी जो आज अर्थ की जगह है, यानी जमीन की जो जगह है. जिस जगह जमीन लोकेटेड है उसको हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं. अच्छा ये गोल्डीलॉक्स जोन जो है ये क्या कहलाता है? ये द मोस्ट हैबिटेबल जोन कहलाता है इस सोलर सिस्टम का. या कुछ साइंटिस्ट इसको, आई डोंट बिलीव इट, लेकिन कुछ साइंटिस्ट को ये भी कहते हैं कि मिल्की वे का सबसे ज्यादा हैबिटेबल जोन है. अच्छा यहाँ पर मेरी डिबेट जो उनसे है वो ये है कि आप ये कैसे कह सकते हैं, अभी तो हमने अपना सोलर सिस्टम भी किसी इंसान के साथ क्रॉस नहीं किया है, तो यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट एग्जिस्ट बियॉन्ड. और हमारी जो दो प्रोब्स गई हैं जिसको वॉयजर 1 और वॉयजर 2 कहा जाता है, इवन दो कि वो यू नो उसने बहुत डिस्कवरीज की हैं, पर द सेम टाइम वो चूंकि एक मैन मेड वेसल है और ऑपरेशनल जो है वो सूरत में होता है कि जब उसमें कोई इंसान या कोई और चीज ना हो और वो एक मशीन की सूरत में चला जा रहा है, और जो उससे जो नॉलेज हमें मिली है उसकी बुनियाद पे ये फैसला करना मुश्किल है कि क्या इस सोलर सिस्टम के बियॉन्ड कोई दुनिया आबाद है या नहीं. तो यू डोंट नो, हर चीज एक मफरूजे पे मबनी है. अच्छा, फिर जब हम मुख्तलिफ किस्म की आबादियों की बात करते हैं या मुख्तलिफ किस्म की अर्जों की बात करते हैं या कायनात की बात करते हैं, तो फिर डायमेंशंस का जिक्र आ जाता है. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बिकॉज ये याद रखिएगा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साइंस के अंदर एक दूसरे को रेसिप्रोकेट नहीं करती, येट हम उन्हें तस्लीम करते हैं. अच्छा, मैं उस पर जाऊंगा नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हो रहा, बिकॉज आज आई एम सॉरी अगर हो रहा है तो गाना सुन लेते बिकॉज जाने दें, बस सिर्फ इतना. आई एम सॉरी, समटाइम्स आई गेट क्रेजी, सो आई एम रियली रियली सॉरी, बट एनीवेज आई एम गोना प्ले दिस, लेट्स प्ले अ सॉन्ग, बाद में बात करेंगे. आई डू अपोलोजाइज, एट टाइम्स यू नो मेरे अंदर का साइंटिस्ट जो वो बाहर उभर के आ जाता है. And kind of gets crazy, so I do apologize. Here we go. Listen to this, and you're gonna like it. Reason is, song hai, अच्छा है, सुन लीजिए. All right. Yeah, तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कोई पढ़े लिखे बात नहीं करना चाहता हूँ. But it's just different. I think मुझे कभी कभी ना ऐसा यहाँ आके ना मैं खामखामे वो बातें करने लगता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए. But आप कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? All right then. अगर आप लोग ठीक हैं तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. और मैं I don't know what this is, but मैं चला लेता हूँ, पता चल जाएगा मुझे. Let's see. अच्छा, it's that song. Alright then. So मैं play, मैं बस देख लूँ अगर मुझे मिल जाए तो. मुझे लगता है कि मिल तो जाना चाहिए, कुछ चीजें मैं ढूंढ रहा हूँ. एंड या हियर वी गो, दिस इज द फर्स्ट वन, आई एम गोना प्ले दिस और फिर उसके बाद हम बाकी चीजें करते हैं. लेट मी सी. ओके, ऑलराइट, सो दिस इज आतिफ. नाउ यू गाइस नो एग्जैक्टली कि मैं कहाँ आतिफ का क्या निकालूंगा, आपको पता ही होगा ना कि आतिफ तो. I'm going to play it anyway. Just hold on one second. All right. So, let me see. Yeah, I think. Listen to this. Next three songs are going to be just remixes. You're going to like them. All of them. So get ready. Yep. No more philosophy. Or anything else. Just listen to the songs. Enjoy. That's it. Don't do anything that I won't do. Alright then, ladies and gentlemen, once again, welcome back. Kya hal chal? Sab theek? Abhi main ek cheez padh raha tha. Padh kya raha tha? Matlab wo, aapko pata na, kuch cheez scroll karte hain aap to usme aa jati hai. To uske andar ek badi achha sa experiment maine abhi dekha hai, to I would like to share that with you. एक प्रोफेसर ने एक जार लिया अपने क्लास के सामने और उस जार के अंदर गोल्फ बॉल्स डाल दी और वो काफी ऊपर तक भर गया. तो उसने कहा कि ये जार फुल है? उसने कहा हाँ बिल्कुल फुल है. स्टूडेंट्स ने कहा हाँ बिल्कुल फुल है. फिर उसके बाद ने उसने कुछ पेबल्स लिए, कुछ पत्थर लिए और वो डाल दिए, छोटे छोटे पत्थर, और जाहिर है उसमें फिर भी जगह थी. उसने फिर पूछा अब फुल है? उन्होंने कहा हाँ फुल है. फिर उसके बाद उसने सैंड लिया और वो भी डाल दी सबसे आखिर में. उसने कहा कि अब फुल है? उन्होंने कहा फुल है. तो उसने कहा कि ये तुम्हारी जिंदगी है. कैसे? ये गोल्फ बॉल क्या है? ये रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारी रिलेशनशिप्स को, यू नो, तुम्हारे प्यारों को, तुम्हारे अपनों को, तुम्हारी जिंदगी को, उसकी प्रायोरिटीज को. ये रिप्रेजेंट करता है. जो पेबल्स हैं वो तुम्हारी जॉब, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा करियर, इसको रिप्रेजेंट करता है. और वो जो सैंड है वो एवरीथिंग एल्स है, वो स्मॉल स्टफ है. लेकिन और यही तुम्हारी जिंदगी है. अब सोचो कि तुम सबसे पहले सैंड डाल दो, तो ना पेबल्स को जगह होगी और ना गोल्फ बॉल्स को जगह होगी. तो हमको प्रायोरिटाइज करना है. आज हम एक ऐसी रैट रेस में हैं जहां प्रायोरिटीज बदल गई हैं. मनी हैज बिकम एवरीथिंग, करियर हैज बिकम एवरीथिंग, फैमिली इज समवेयर एल्स, मोहब्बत इज समवेयर एल्स. आज हमारा सबसे अच्छा दोस्त जो है, हमारा जो पास टाइम है, वो हमारा मोबाइल है. दैट्स व्हाट वी हैव. आज हम इतने लोगों को जानते हैं लेकिन आज बहुत अकेले हैं. आज हमारे डिप्रेशन की शक्लें और हैं. आज हम इस बात पे उदास हो जाते हैं कि लोगों ने हमारी तस्वीर को पसंद नहीं किया. आज हम अपनी ही तस्वीरों को बूस्ट लगाते हैं. आज हम अपने ही खानों की तस्वीरें उतार कर पता नहीं क्यों लगाना चाहते हैं, या लगाते हैं तो ये सोच के लगाते हैं कि शायद इसे देख के लोग हमारे बारे में जानेंगे कि हम कौन हैं. हम छुपाने की कोशिश करते हैं, एंगल्स वो लेते हैं जो अच्छे होते हैं, हजार किस्म के फिल्टर्स आ गए, और खाने वो लगाते हैं जो बहुत हाईली डेकोरेटेड होते हैं. जिंदगी से जिंदगी का चार्म, उसकी सादगी चली गई. अब सब कुछ फेसबुक है, अब सब कुछ इंस्टा है, अब सब कुछ स्नैपचैट है, अब सब कुछ यही है, टिकटॉक है. आई एम नॉट सेइंग ये गलत है, ये मुख्तलिफ है. और अब दुनिया ऐसी है, आने वाली दुनिया से और कहीं ज्यादा मुख्तलिफ होगी, बल्कि वो इतनी मुख्तलिफ होगी कि आपको कोशिश के बावजूद भी याद नहीं होगा कि आप किस दुनिया में रहते थे. इमेजिन करो आज से 50 साल के बाद की दुनिया क्या होगी, तुम सोच भी नहीं सकते. बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स आ चुके होंगे, ये जो तुम टेलीविजन देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, ये बदल चुके होंगे. मैं आपको बता रहा हूं, आप टेलीपैथी के जरिए लोगों से बात किया करोगी. आप आपकी जो जहाज होंगे वो बदल चुके होंगे. आपका मोड ऑफ ट्रैवलिंग बदल चुका होगा. आपका मोड ऑफ बर्थ बदल चुका होगा, कि आप पैदा कैसे होंगे ये भी बदल चुका होगा. आपने शायद थोड़ी सी दुनिया कॉन्कर कर ली होगी, थोड़ी सी दुनिया. दैट मीन्स के आप कहीं ना कहीं जरूर निकल गए होंगे, लेकिन अगेन आप मशीनों के साथ मिलके काम करेंगे. एआई और आप साथ इकट्ठे मिलके काम करेंगे. एंड देयर मे बी अ डे जब एआई आपको सुपरसीड कर जाएगी. देयर मे बी अ डे. तो द क्वेश्चन इज कि हम कहां थे और कहां आ गए. ये जो रैपिड चेंज है, इसको हमारे पास दो चॉइसेस हैं. या तो हम इसको एक्सेप्ट कर लें और ये कहें ठीक है जी ऐसा ही है और इसी बहाव में बह जाएं, या जो स्टीफन हॉकिंग्स कहता है, जो और बहुत सारे लोगों ने कहा है, कि हमें बाउंड्रीज बनाना पड़ेंगी. फ्रीडम विदाउट बाउंड्री इज नॉट रियली फ्रीडम, ट्रस्ट मी. बहुत सारे इस पे पंडित जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं, नहीं नहीं बाउंड्री तो होनी नहीं चाहिए फ्रीडम की, फिर क्या फ्रीडम अगर बाउंड्री. आप करते रहिए, आई डोंट अग्री विद इट. फ्रीडम ऑल्सो हैज अ बाउंड्री, एंड इफ यू डोंट अग्री विद इट दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. मुझे किसी फलसफे में नहीं जाना, बट मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, कितने दोस्त हैं आपके आजकल, कितने लोगों, कौन सी बात है जो आप कर सकते हैं अब लोगों से. आजकल हम पॉलिटिकली इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि हम जरा सी बात नहीं करते और एक खामहा का वावेला मच जाता. अल्लाह ताला हम पे और हमारे हाल पे बहुत रहम करे. आज हम लोग पता नहीं क्या सोचते हैं और क्या लिखते हैं और क्या, सब कुछ ही तो फेक है. आप उठा के देख लो कौन सी रियलिटी है जो बताई जाती है. हर आदमी फिलोसोफर है, और मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है. उसने अपनी तरह से जिंदगी बरती है और उसका ज्ञान उसके पास है, तो वो उसे बांटना शुरू कर देता है. बट हियर इज माय क्वेश्चन, सभी चीजें एक साथ सही नहीं हो सकती और सभी चीजें एक साथ गलत नहीं हो सकती. तो जो सही है वो सही रहेगा और जो गलत है वो गलत रहेगा. सब्जेक्टिव है, बिल्कुल सब्जेक्टिव है, उन लोगों के लिए जो लोग ये समझते हैं कि सही और गलत जो है वो इंडिविजुअल होता है. ऐसा है नहीं. माशरती सही होता है और माशरती गलत होता है. जाने दीजिए, गाना सुनो. ऑलराइट, या ऑलराइट, लिसन टू द सॉन्ग्स एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनी फिलॉसफी और एनीथिंग. बट कभी कभी मैं सोचता हूँ ना, आज हमारे पास एक मुझे खबर मिली, हमारे एक जमाने में काम किया करते थे, मैं जानता हूँ अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके साथ जिंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुई जो जाहिर है उनकी फैमिली की थी एंड ऑल दैट, एंड वो डिप्रेशन के अंदर चले गए और उसी में उनकी वफात हो गई. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग, ऐसे ही सोच रहा था मैं कि वो डिप्रेशन में गए क्यों. वो इसलिए गए बिकॉज उनको कोई इवेंट नहीं मिला. आज फेसबुक भी अवेलेबल है, आज यूट्यूब भी अवेलेबल है, आज इंस्टा भी अवेलेबल है, आज आपके मीडियम्स बहुत सारे हैं. पहले तो ये सारे मीडियम्स नहीं थे, लेकिन खुदकुशियों की तादाद बहुत कम थी, लोगों की अमवात की शरह जो थी वो कम थी, बेहतर थी जिंदगी की शरह. और ये सब हमेशा से नहीं है, मैं प्लेग्स की बात नहीं कर रहा, मैं यू नो अनरेस्ट की बात नहीं कर रहा जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसकी बात नहीं कर रहा, जंगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे जिंदगी ज़्यादा थी. अब के दौर में जिंदगी भी कम है और बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हम तरह तरह के डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं. अच्छा, क्या ये हमेशा ऐसा रहेगा? नहीं. कहा यह जाता है कि जिंदगी आपकी अब बढ़ जाएगी, लेकिन उसका रीजन ये नहीं होगा कि आप खुश खुर्रम जिंदगी गुजारेंगे. सॉरी जी, पूरी बात सुन लें. कुछ लोगों ने कहा हुआ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, साइंस कहती है कि जिंदगी बढ़ जाएगी. बिल्कुल सही कह रहे हैं, साइंस यही कहती है कि बढ़ जाएगी जिंदगी. साइंस तो ये भी कहती है कि मौत को एक दिन कॉन्कर कर लिया जाएगा. साइंस तो ये भी कहती है कि आप सिर्फ ये जो अपनी दायर है, बेसिकली तो हम कार्बन क्रिएशन है ना, तो वो साइंस ये भी कहती है कि जी आपका ये जो जिस्म है ये एक 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 लिबास की सूरत इख्तियार कर लेगा और ये आप बदल बदल के पहनते रहेंगे. आपके दिमाग को कहीं रख दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा, मेमोरी में आपके आपका दिमाग होगा ही नहीं, अब उसको चिप को लोड कर दिया जाएगा. तो साइंस तो और बहुत सारी चीजें कहती है, साइंस तो बहुत कुछ कहती है, बट देन अगेन यू नो इमेजिन कीजिए क्या जिंदगी है ना, कमाल जिंदगी होगी जब आपको कुछ याद नहीं, आपकी सेलेक्टिव मेमोरीज होंगी, आप अपने लिए टाइम बाय कर सकेंगे. मुझे एक साल दरकार है, मुझे दो साल दरकार है, मुझे 400 साल दरकार है. दिस इज एग्जैक्टली ट्रू. आने वाले दिनों के अंदर ही सब कुछ हो सकेगा, बट वुड दैट बी यू दो, क्या वो आप होंगे? दैट्स द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन. खैर हम उस तरफ नहीं जाते, वो ना तो ये कोई एथिकल डिबेट है ना कोई और डिबेट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं दैट हमारे साथ एक बड़ा अजीब हैरतअंगेज सिलसिला हुआ है कि हम उसके नाइब तो हैं, बट वी आर ट्राइंग टू प्ले गॉड, एंड दैट इज अ वेरी डेंजरस गेम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ डिजास्टर है इसमें और तबाही है और इसके अलावा कुछ नहीं. हम कौन लोग हैं, हम क्या बातें करते हैं, किस चीज को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको हमेशा बताता हूं. उसने कहा है, मैंने पहले आसमान पे सितारे लगा दिए हैं, पहले आसमान पे, और ये पहला आसमान हमसे मुसख़र नहीं हुआ है. हमें जो साइंस से पता चलता है, जो एस्ट्रोफिजिक्स से पता चलता है, या फिजिक्स से पता चलता है, या एस्ट्रोनॉमी से पता चलता है, तो हमको ये पता चलता है कि जो कुछ हमने देखा है, दरियाफ्त किया है, यानी दुनिया की सबसे पुरानी लाइट, कदीम लाइट जो हम तक पहुंची है, वो तकरीबन 93 बिलियन लाइट ईयर्स ओल्ड है. 93 बिलियन लाइट ईयर्स, यानी 93 बिलियन लाइट ईयर्स, यानी अगर 93 बिलियन साल, 93 बिलियन ईयर्स अगर हम रोशनी की रफ्तार से चलें, जो कि है 300,000 किलोमीटर फी सेकंड या 186,000 मील फी सेकंड, अगर इस रफ्तार से हम 93 बिलियन साल चलेंगे, तो हम उस जगह पहुंचेंगे जहां से रोशनी हम तक पहुंची है. अब आप इमेजिन करें, और जो हमें पता है उसके बारे में ये कहा जाता है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो कुछ उसके बाहर एग्जिस्ट करता है उसका 1% भी नहीं है. तो अभी 99% हमने मुसख्खर नहीं किया, और ये पहला आसमान है, याद रखिएगा ये पहला आसमान है. तो हियर इज माय क्वेश्चन, हम क्या करने चले? क्या ये हमारा जो सुपर तरीन कंप्यूटर है, जो सुपर तरीन कंप्यूटर है, कहा जाता है कि अगर आप इंसानी जहन का एक कंप्यूटर बनाए तो वो न्यूयॉर्क सिटी जितना बड़ा होगा. यस, उसकी कैपेसिटीज अगर आप ट्राई करें तो वो उतनी बड़ी होंगी, उसकी थ्रेडिंग अगर आप ट्राई करें तो वो इतनी बड़ी होंगी. आपको लगता है कि इससे पहले कोई तहजीब तबाह नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है, जाने दीजिए. कभी ना सोच के देखिएगा, एक बड़ा शेर है अल्लामा इकबाल का, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताआत के लिए कुछ कम न थे कर रोबे. बेसिक बात है, बड़ी सिंपल बात, वो जो एक कनेक्शन था ना हमसे ह्यूमैनिटी का, वो खत्म हो गया. आज टू एज्ड सॉर्ड है ना. आज हम जितना मर्जी बॉयकॉट करें, जितना मर्जी चीजों का हम बॉयकॉट करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हम हैंडीकैप्ड. हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हमने आज खुद ये डिसाइड किया है कि हम कोई चीज भी अपने तौर पे नहीं करेंगे. आज पूरी दुनिया बहुत आगे है, बहुत सारी बातें कर रही है, और हम क्या करते हैं? हम खड़े होकर तमाशा देखते हैं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डूइंग. हमने अपने मुल्क को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां हमने अब सियासतदानों को इजाजत दे दी है कि आप हमसे खेल सकते हैं. और सियासतदानों की क्या बात है, किसी को भी, यू नो, आप एक्सपेरिमेंट्स कीजिए. हर जमात अपनी ही बात करती है. आज सबके सब किसी भी चीज की वजह से इकट्ठे हो गए, कल सबके सब किसी भी चीज की वजह से अलग हो जाएंगे. पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट से गुजरता रहेगा. हमारे यहां अच्छा दौर वो होता है जब 3-4 महीने के लिए सुकून, वो आता नहीं. मैं, हमारे कुछ दोस्त हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बड़े महारत रखते हैं, तो उनके मैं तबसरे कभी कभार वो लोग मुझे भेजते हैं, तो मैं सुन रहा था तो मुझे बड़ी हैरत हुई. पाकिस्तान बहुत स्टेबल हो जाएगा, हम बड़े आगे जाएंगे. तो मैंने उनमें से एक को रिंग किया और मैंने कहा, तुम क्या स्टेबिलिटी की क्या बात कर रहे हो, क्या स्टेबल हो जाएगा, क्या डॉलर जो है वो 60 रुपए पे आ जाएगा? तो वो बड़े इस्तेहजाइया अंदाज में हंसे, कह रहे, नहीं नहीं भाई, वो तो नहीं होता भाई, वो तो नहीं होता भाई, वो नहीं हो सकता. मैंने कहा, तो डॉलर कहाँ पे रहेगा? कह रहे, भाई डॉलर जो है ना, वो तकरीबन आप देख लीजिएगा कि वो यही रहेगा 280-300 के दरमियान. कभी कभी ये होगा कि क्रॉस कर जाएगा 300, और कभी ये होगा कि 250 के करीब चला जाएगा, बट यही रहेगा. मैंने कहा, अच्छा पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जे उनका क्या होगा? कहले, वो तो अभी होंगे. मैंने कहा, IMF से जो सैंक्शंस लागू होंगी उनका क्या होगा? कहले, नहीं वो भी अभी तो प्रॉब्लम में आएगा. मैंने कहा, अच्छा चलो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई, बिजली का क्या होगा? कहले, मतलब, मैंने कहा, नहीं आप बता रहे ना, मुझे बताएं बिजली का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा. उन सारों का जवाब ये था कि वो अनकंट्रोलेबल है, वो उन्होंने कहा. सो हियर इज माय क्वेश्चन, तो हम किस तरफ की स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, माफ कीजिएगा आपका ये बबल फोड़ देता हूं मैं, हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ इसलिए सिर्फ जाएंगे क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. जो दूसरी चॉइस है वो बाकी तमाम जमातों को गवारा नहीं. दैट्स व्हाट इट इज. खुल के बात कर लेना. नो वन टॉक्स अबाउट द एलिफेंट इन द हाउस. नो वन डज. ऑल इन द रूम, सॉरी, नो वन डज. लेट्स टॉक अबाउट इट. क्या मर्ज, क्या जाता है? ये जो अभी आपने सारी एक्सरसाइजेस देखी हैं तमाम चीजों की, और ये एक नहीं है, किसी चीज को भी उठा लें, 2018 उठा लें, 2013 उठा लें, 2024 उठा लें, इट्स ऑल द सेम, नथिंग चेंजेस. हमारे बड़े कभी, आप मुझे एक बात बताइए, आप जिन्हें जलसों में गालियां देते हैं चंद महीनों पहले, उसके बाद आप उन्हीं के साथ जाके बैठ जाते हैं. पॉलिटिक्स ये भी दिखाता है. और हम बेवकूफों की तरह से हर उस बात पे ईमान ले आते हैं जो बात किसी पॉलिटिशियन ने कही होती है, उसने जो मंशूर हमें बेचा होता है, चाहे वो कोई भी हो, हम उस पर ईमान ले आते हैं. हमारे यहां शख्सियात को पूजा जाता है, तो पूछते रहिए, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है. आप जिसको पूछना चाहते हैं उसको पूछ लीजिए, पर प्लीज फिर ब्लेम करना छोड़ दीजिए इनको कि ये लोग ठीक नहीं कर सकते, ये तो कर ही नहीं सकते. अगर ये कर सकते तो खराब ही क्यों होता? इन्हीं लोगों ने तो असल में खराब किया है. इन सब ने अपनी अपनी बारियां लगाई हैं. मेरा सवाल यह है कि हमने क्या किया? हमने भी इन्हीं पर रिलाय किया ना. अब ये मुझे मत कहिएगा हमें चॉइसेस नहीं मिली. नहीं, ऐसा नहीं है. जितने कसूरवार ये हैं उतने ही हम हैं. हमसे ज्यादा VIP कोई नहीं हो सकता. हमने एक कल्चर अपने अंदर डेवलप किया है. हमें आम लोगों से नफरत है, चाहे वो हम खुद ही क्यों ना हो. हम अपने आप को खास समझते हैं. हम सीखना जुर्म समझते हैं, जबकि सिखाना हमारा अवलीन फर्ज बन जाता है. एक बात याद रखिएगा, वो शख्स जो सिर्फ सिखाने की कोशिश करता है और जिंदगी में सीखता कुछ नहीं, वो कभी कुछ नहीं सिखा सकता. हमारी बात में असर क्यों नहीं होता? लोग मोटिवेट क्यों नहीं होते लोग? और वो तमाम लोग जो जरूरत के तहत बाहर जाके रहने लगते हैं, बसने लगते हैं, हम उन्हें तरह तरह के नाम देते हैं. और वो लोग जो यहां बैठ के दूसरी जगह काम कर रहे हैं, वो भी तो वही करते हैं. ओ भाई, मार्श एक बहुत बड़ी हकीकत है, इससे कब तक नजरें चुराओगे? घर में खाने को नहीं है, और तुम उन्हें किस बात का दर्श देने निकले हुए? अपनी लड़ाइयों में इनके घरों में तो कोई कमी नहीं होती.
इनकी प्राडोज के अंदर तो कोई कमी नहीं होती, इनकी लैंड क्रूजर्स के अंदर तो कोई कमी नहीं होती, इनके महलों में तो कोई कमी नहीं होती, इनकी बिजलियों में तो कोई, इन्होंने कभी किसी आपके किसी लीडर ने लोड शेडिंग देखी है? किसी ने देखी है? नहीं देखी है कभी इन्होंने. ये पानी मिनरल वाटर का, ये जो चाय बनाते हैं मिनरल वाटर की बनाते हैं, दे डोंट नो एनीथिंग. कभी एक दूसरे जाने दीजिए. सोच रहा था आज पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, कर तो नहीं रहा, लेकिन यार कुछ थोड़ा ऑड नहीं लगता आपको? आपको नहीं लगता कि ये तो चले कसूरवार है ही है सबको, सारे को, एस्टैब्लिशमेंट टू पॉलिटिशियंस टू एनीवन एंड एवरीवन, सारे कसूरवार है. कहीं ना कहीं तो हम भी आते हैं ना यार, हमारा भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसूर तो होगा ना. खैर जाने दे, गाना सुनो.
अच्छा मैं करना तो नहीं चाहता हूँ बात, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, आपसे शेयर कर लेता हूँ. लोग इस पर बात नहीं करते बट मैं बात कर लेता हूँ. पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है, अगर उसकी लाइबिलिटीज को हम देखें तो मुसलसल बढ़ रही हैं. इस वक्त तक पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो 1,31,159 बिलियन डॉलर्स है. या और ये आपका हो जाएगा जुलाई दिसंबर तक. और ये जो हर क्वार्टर जो है इसमें इजाफा जो होता है वो 1.417 बिलियन का होता है, 1.09 ओवर द क्वार्टर. एंड यार इंक्रीज जो है 1.99 की इंक्रीज है. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ये क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है. मतलब एक कंट्री ये 45-46% ऑफ टोटल GDP, इमेजिन दैट, इमेजिन. तो ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ा बहुत बहुत डेंजरस है. और इंटरेस्ट पेमेंट में आकर आपको बताऊं तो वो आपका सर पागल हो जाएगा. ये समझ लीजिए कि 7.3 ट्रिलियन ये आप रुपीस पे करेंगे इन डेट, सॉरी इन द इंटरेस्ट जो आप करते हैं, जो कि 5.7% GDP के इक्विवेलेंट है. सो यू कैन इमेजिन 7.3 ट्रिलियन, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. यू नो ये मतलब दिस इज क्रेजी, दिस इज रियली क्रेजी. अगर आप ये बोले ना कि यू नो आप IMF की तरफ जा रहे हैं और आप बोरो करेंगे, अब ये सियासतदान हमें कितनी बातें बताते हैं. ये मैं आपको अगस्त की बात बता रहा हूँ. 2023 अगस्त तक पाकिस्तान ने, इसके अंदर भी ये वाली किस्त शामिल नहीं है, इससे पिछली वाली शामिल नहीं है, तो पाकिस्तान ने 23 मरतबा वो सिर्फ अलोन IMF की तरफ गया है बेल आउट के लिए. 23 मरतबा गए हैं हम. और ये IMF के अलावा भी हमने वर्ल्ड बैंक से, इससे, उससे, एशियन बैंक से, फिर सऊदी ममालिक आ जाते हैं, फिर बहुत सारे और वो हमारी मदद के लिए रहते. तो हम तो लोन्स पे जिंदा हैं. मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं दैट्स व्हाट इट इज. तो कहीं ना कहीं तो हम भी कसूरवार हैं. आप स्क्रूटनी करें, आप स्क्रूटनी बड़े बड़े लोगों की तो करते नहीं, हमारे यहां कहां होती है बड़े लोगों की स्क्रूटनी. हम यहां बैठ के कोई भी बात कर लें, जितनी मर्जी सीधा कर लें, और अब एक ऐसे मकाम पे हम आ गए जहां इट्स पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. चीजों को सही होने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है. और मैं आपको वैसे बता रहा हूं, इनडायरेक्टली अल्लाह मियां पाकिस्तान की हेल्प करते हैं, और वो डायरेक्टली भी होती है लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा हेल्प होती है. वो इस सेंस में होती है कि समहाउ पाकिस्तानी लोगों में रेजिलियंस बहुत है और पाकिस्तान से प्यार बहुत है, और वो यहाँ बैठ के भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को हेल्प करते हैं और बाहर से भी पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं. अभी ये जो नई चीज़ें निकली हुई हैं जिसके अंदर यू नो हम वेब के जरिए डिजिटल दुनिया के अंदर हम पैसे बना रहे हैं, इसका फ़ायदा इनडायरेक्टली पाकिस्तान को हो रहा है, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं. पर हुकूमत इस बात को एक्नॉलेज नहीं करती है, वरना ये उनके अमल है. यू कैन इमेजिन 23 मरतबा अगस्त तक की बात कर रहा हूँ मैं. इसके अंदर एक किस्त वो नहीं शामिल है जो आपको मिली, और एक जो मिलने जा रही है वो भी शामिल नहीं है. तो यू कैन पॉसिबली इमेजिन कि अगस्त तक आपने 23 मरतबा IMF का सामना किया, 23 मरतबा IMF ने आपको बेल आउट पैकेज दिया. होना तो ये चाहिए था कि आप एक मरतबा लेते उसे वापस करते और फिर कभी ना लेते, बट ऐसा. और ये IMF सिर्फ एक है. आप ये मत समझें कि IMF के अलावा हमने कर्जा नहीं लिया, हमने बेतहाशा कर्जा लिया, बहुत सारा कर्जा माफ किया है, बहुत सारे कर्जे को हम एक्सटेंड करवा देते हैं. नॉनदलेस तो ये सिचुएशन इस तरह से ठीक नहीं होनी है. हम बातें करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर, पता नहीं, मैं रोजाना जब शोज देखता हूँ तो कभी कोई बेचारा माहिर माशियात आके हमें बता रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए. उसे भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमें क्या वाकई करना चाहिए. जब तक सिस्टम तब्दील नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, जो मर्जी कर लें आपने. हमारे यहाँ, हमारे यहाँ मेरिट का खुलेआम कत्लेआम है, तो क्या आप करेंगे, आप ले आइए. देखिए आप ना जब गेहूं की फसल उगाते हैं ना तो उसमें गेहूं ही बोना पड़ता है, तो गेहूं ही कटेगा. जब आप इडियट्स को बोलेंगे ना कि यार तुम यू नो उठा के फैसले कर लो, तो फिर यही होगा. आप इमेजिन करो, आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ जो फैसले लिए गए हैं वो कमाल किस्म के फैसले होते हैं? हमारे यहाँ जब किसी को वजीरे टेक्नोलॉजी लगाया जाता है तो उसका टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई ताल्लुक नहीं होता, मतलब जेन्युइनली कोई ताल्लुक नहीं होता उसका, वो लगा हुआ था वजीर. किसी को कोई कलमदान दे दिया जाता है, किसी को कोई कलमदान दे दिया जाता है, और फिर होता क्या है, फिर वही होता जो हो सकता. ये सब लोग टेन्योर में या पावर में इसलिए आते हैं ताकि पैसा बनाया जा सके. इनका एक इजीएस्ट टारगेट होता है एस्टैब्लिशमेंट, जी उसने ये कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया उसने, तो सारे वहीं से आए. और मुझे समझ में नहीं आता, जब आपकी बारी नहीं है तो वो बहुत बुरे हैं, और जब आपकी बारी है तो वो बहुत अच्छे. इतनी सी बात है. मतलब हमको ना सिविक सेंस भी नहीं है, हम ये भी नहीं समझ पाते हैं कि मतलब सोचें यार कब तक आप खेलते रहेंगे मुल्क से, कब तक आप ये डिसाइड करेंगे. और इनको तो छोड़ें यार, वो तो चले, मैंने मान लिया जी, पॉलिटिशियंस भी एक तरफ जी, एस्टैब्लिशमेंट भी एक तरफ, सभी लोग गलत होंगे, मान लिया जी, चले वो ओके हो गए. हम सब बहुत सही हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं, अपना ट्रैफिक हमने देखा है. ये भी आपको कौन कौन क्या, कोई हुकूमत आके बताती है, हिजब इख्तलाफ बताती है, कोई पोलिटिकल पार्टी बताती है कि आपने ऐसे ट्रैफिक चलाना है? ये क्या है, ये लीड बाई एग्जाम्पल है ना. आप अपने बच्चों को सुबह सुबह छोड़ते हैं, मोटरसाइकिलें इधर उधर से जिगजैग करके निकालते हैं, गाड़ी के गलत टर्न मारते हैं, रेड सिग्नल पे क्रॉस कर लेते हैं, तो नस्ल भी तो वही बड़ी होगी ना. यही नस्ल ऑटोमेटिकली कैसे सीख जाती है जब अमेरिका पहुंचती है, यही नस्ल कैसे रुकना सीख जाती है जब दुबई पहुंचती है, क्योंकि उसे पता होता है यही लोग होते हैं. लेकिन एनवायरमेंट बिल्कुल अलग है. अब आप बताइए मुझे, कसूर किसका है, मेरा या आपका? हम सबका मुश्तरका कसूर है. आप इल्जाम किसी को भी लगा दें, किसी को भी सॉफ्ट टारगेट बना लें, अपनी बातें तो. और यही बात हमारे लीडर्स हमको बताते हैं, सिखाते हैं, किस किस नाम से बेवकूफ नहीं बनाते. कभी हमको कहते हैं ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फला लोग पाकिस्तान के खिलाफ है, फला बिल्कुल होंगे जी, मैंने तो इससे इनकार नहीं किया, बिल्कुल होंगे. बट मेरा क्वेश्चन ये है, ओ भाई जो खिलाफ नहीं है कम से कम वो तो काम कर लें, वो भी काम नहीं कर रहा. मतलब मुझे आप एक चीज बताइए, मुझे बहुत ऑकवर्ड सी बात लगती है, हमारे यहां मार्श के लिए लोग बाहर जाते हैं. मैं जब कहता हूं क्यों, तो क्यों का जवाब बिल्कुल क्लियर है, इसलिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हैं बाहर, बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं. अब मेरा सवाल यह है कि हम अपने मुल्क में ये अपॉर्चुनिटीज क्यों क्रिएट नहीं कर सकते? बस यहीं से बात शुरू होती है और फिर यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि इसका जवाब ये होता है कि क्रिएट की नहीं जा सकती. तो अगर ये क्रिएट नहीं की जा सकती तो फिर आप ये तस्करा भी छोड़ दें कि हम कभी सही होंगे. ये जैसे हम चल रहे हैं ना ऐसे ही चलेंगे, कुछ बेहतरी आ जाएगी कभी कभी, कुछ खराबी हो जाएगी कभी कभी, हम लुढ़कते पुढ़कते. जब तक हम तब्दीली जेन्युइनली नहीं लाएंगे, नारों की तब्दीली से नहीं, हुकूमतों की तब्दीली से नहीं, हमारे अपने अंदर की तब्दीली से होगा. हमारे एक दोस्त हैं, बल्कि उनकी बेगम जो है वो अक्सर सुनती हैं, वो खुद भी सुनते हैं लेकिन वो ज़रा कम मैसेज करते हैं, बट वो सना हमेशा सुहेल और अपनी तरफ से मुझे मैसेज करती हैं. तो सुहेल से पूछिए, अभी रिसेंटली उनके साथ एक 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 पाकिस्तान के अंदर वारदात हुई, एंड दे हैड दे लेफ्ट द कंट्री, दे लिव इन दुबई नाउ. दिस इज द गाय हु वर्क्ड इन अ वेरी प्रेस्टीजियस कंपनी, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा, एंड ही वर्क्ड एट वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट. क्या हम इस बच्चे की सलाहियत से फायदा नहीं उठा सकते थे? बट हमने नहीं उठाया, हम उठा ही नहीं सकते. बिकॉज अगर आपको कहीं से यह बता दिया गया है ना कि आपने बेईमानी नहीं करनी, तो याद रखिए फिर आपका गुजारा हमारे मुल्क में बहुत सख्त मसाइल के साथ होगा. बहुत, ये नहीं कि गुजारा नहीं होगा, लेकिन सख्त तरीन मसलों से गुजरेंगे आप. आपने कभी हमारी असेंबली के सेशंस देखें? मुझे समझ में नहीं आता हम क्यों पॉलिटिशियंस के सेशंस को दिखाते हैं.
किसी दिन ना खाला रशीदा को बुलाइए, उनको बोलें कि वो असेंबली से खिताब करें. खाला रशीदा कोई भी हो सकती हैं, आपके घर में, मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में, इधर उधर कोई भी, एक नाम है सिर्फ. और उनसे कहें कि खाला अपनी जिंदगी बताएं, आपकी जिंदगी में मसले क्या हैं, और उन्हें आजादी से बोलने दें. ये जितने जितने लोग हमारी असेंबलियों से खिताब करते हैं ना, ये बस हमारे यहां तो खिताब भी इजाजतों पे किया जाता है. पहले तो जमीन आसमान के कुलाबे में लाए जाते हैं अपने लीडर के लिए. उसकी जीरक सियासतदान, वो इतना जबरदस्त आदमी था या है, हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमारे दौर में दूध की नहरें कहां हैं? कौन सा दूध, कौन सी नहरें, हम कहां खड़े हैं? लाइट नहीं है, पानी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, मतलब बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है. आज मुझे पता चला एक आदमी ने अपना मोबाइल बेच के घर में राशन डलवाया. व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. इसके बाद आने के बाद आपको मैं एक वाक्य सुनाऊंगा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने का. और सोचिए मतलब हम क्या बातें कर रहे हैं. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक चीज एक शेयर करता हूँ. आज मैं कुछ पढ़ रहा था, कुछ देख रहा था, तो मैंने एक वाकया सुना और वो बड़ी कमाल बात थी. हज़रत उमर फारूक के दौर का वाकया है कि आप खलीफा थे और आप रातों को निकला करते थे और आप जाहिर है लोगों से दरियाफ्त किया करते थे कि क्या है. तो आप एक ऐसे घर में पहुंचे जहां एक बूढ़ी औरत थी और आपने दरवाज़ा खटखटाया और इजाज़त तलब की कि अगर इजाज़त तो मैं अंदर आ जाऊँ. तो थोड़ी पसपेश के बाद उसने कहा कि आ जाएँ, अंदर आ जाइए. तो आप तशरीफ़ ले गए अंदर. जब आप तशरीफ़ ले गए अंदर तो आपने देखा कि यू नो वो खासी लागर भी है और खाने को भी नहीं है. तो आपने पूछा कि क्या वजह है, तो कह नहीं नहीं मुझे बस गिला करना है और हजरत उमर फारूक से गिला करना है. तो उन्होंने कहा कि क्या गिला है आपका, कि मेरा हस्बैंड जो है, मेरे जो शोहर हैं वो मर चुके हैं और मेरे पास खाने कमाने वाला नहीं है और काफ़ी दिन से मैंने खाना नहीं खाया, प्रॉपरली मैं खा नहीं सकती. तो उन्होंने कहा ये आप उनसे क्या गिला करना चाहती हैं, मतलब उन्हें किस तरह से आपके हाल की खबर होगी. तो अब हजरत उमर फारूक कहते हैं कि इस औरत ने मुझे आईन सिखाया है कि आईन दरअसल क्या होता है. वो उस औरत ने सिखाया, ये मैं नहीं कह रहा, ये खलीफतुल वक्त ने कहा है. और वो कहते हैं कि वो कहने लगी अच्छा फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए और उसे लेके आए जिसको खबर हो, मतलब मेरी हालत का पता हो. तो ये है. और ऐसी हजारों मिसालें हैं जो हजरत उमर फारूक के ज़माने की आपको मिल जाएंगी, या हजरत अली करम अल्लाह वजह के ज़माने में मिल जाएंगी, या खुलफा हजरत उस्मान हजरत बकर सिद्दीक के ज़माने की मिल जाएंगी आपको. और वो हम उसको 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 एक यार्डस्टिक बना सकते हैं, लेकिन क्या हम बनाते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अभी देखिएगा रमज़ान आएगा, हम पूरे जज्बे के साथ सरशार होकर रमज़ान भी मनाएंगे, लेकिन इसी रमज़ान के अंदर महंगाई हो जाएगी, पागलों वाली महंगाई होगी. आटा महंगा, चीनी महंगी, खजूर महंगी, हर वो चीज़ जो रमज़ान में इस्तेमाल होती है वो महंगी हो जाएगी. गरीब रोज़े तो रखेगा और उसके बाद ईद का इंतजार करेगा. ईद का भी हमें नहीं पता, ईद पे भी चीज़ें महंगी होती हैं. पूरी दुनिया में जब त्यौहार आते हैं, पूरी दुनिया में त्यौहार जब आते हैं तो वहाँ चीज़ें सस्ती होती हैं, हमारे यहाँ बहुत महंगी होती हैं. हमारे यहाँ जब तक मीडिया को बुलाया ना जाए तब तक अच्छाई को दिखाया नहीं जाता. हमारे यहाँ जब तक मीडिया को ये बता ना दिया जाए कि नहीं जी ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, यूटिलिटी स्टोर्स पे इतने की मिलेंगी, हम ये इकदाम कर रहे हैं. मुझे बताइए क्या हमारे ज़राए ब्लाग या हमारा मीडिया इन्हीं कामों के लिए रह गया है? ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए. मैंने तो आज तक नहीं देखा कि जो बाइडन किसी क्रिसमस सेल पे गया हो और उसने बताया होगा कि आज इस मर्तबा क्रिसमस पे हम सेल लगाएंगे. मैंने तो नहीं देखा. आपने क्या यू नो उसको देखा है, मोहम्मद बिन सलमान को आपने देखा है? वो बाहर निकल के उसने बोला इस रमजान मुबारक हम सस्ती चीजें कर देंगे और वो खड़े होकर तस्वीरें बनवा रहे, कभी देखा है? आई डोंट अंडरस्टैंड. मतलब मैं आपको ऐसी दर्जनों मिसालें दे सकता हूं. यूके के अंदर सेल्स लगती हैं, रमजान का एहतराम किया जाता है, हमारे यहां चीजें महंगी हो जाती हैं. एक तरफ ये है, दूसरी तरफ आप देखिएगा अफ्तार पार्टीज बिल्कुल होनी चाहिए, मैं इसका बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, सब कुछ होना चाहिए.
बट क्वेश्चन ये है, इर्द गिर्द नजर तो डाल लो, हालात क्या हैं? हालात ये हैं कि जब ईद आएगी तो बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, नए कपड़े भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, और इतनी ही दिगरगुं सूरत हाल है, इसको हम शुगर कोट नहीं कर सकते. बट देन अगेन यू नो, हम जितनी मर्जी बातें कर लें, होना वही है जो हमेशा होता है, हर साल होता है. आज मैंने जेन्युइनली ये सोचा था कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर सोचता हूं ना, कभी कभी तो हो जानी चाहिए ना ये बातें, कभी कभी तो दिल की बात कह ही देनी चाहिए. बचपन में जब रमजान आया करते थे तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं था हमारे पास, बट मुझे ये पता था कि बहुत सारे लोग एक साथ खुश हो जाया करते थे. हम सब इसी बात में खुश थे कि त्यौहार मना रहे हम एक दूसरे के साथ. आज इसके बिल्कुल बरक्स आलम है. मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं. आज हमारे पास एक खातून आई मेरे पास, और उनके बच्चों को स्कूल के अंदर बैठने नहीं दिया जा रहा क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी, उनके हस्बैंड नहीं रहे. तो इसका मतलब ये, अगर आपका हस्बैंड नहीं रहा और आप खुद कुछ कमा नहीं सकती या खा नहीं सकती, तो क्या आपको आपके बच्चों को पढ़ने का, तालीम का कोई हक नहीं है? आई हैव नो आइडिया. हम कहां से जस्टिफाई करेंगे? कौन से हमारे अरबाब इख्तदार हैं जो इस चीज को जस्टिफाई करेंगे? यहां तो आप एक दूसरे को तसल्ली दे लेंगे, ऊपर क्या बताएंगे? और ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा मेरी, आपसे यहां तो कोई हिसाब नहीं ले सकता, लेकिन ऊपर हिसाब होगा, और हर चीज का होगा, हर चीज का होगा. अगर पैगंबर अंबियाओं को माफी नहीं है, तो आप और मैं तो इंसान हैं, इंसानों को तो माफी हरगिज नहीं है, हिसाब तो देना पड़ेगा. हमें किस चीज का खौफ है? किसी भी चीज का खौफ नहीं. हम तो जाने दीजिए इस बात को, हमारे पीछे बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होती हैं. हमारे मुल्क में 5-6-7 तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे लीडर्स की, हम जिन भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं उनकी, और हर पार्टी कायदे आजम की तस्वीर जरूर लगाती है एज अ रेफरेंस कि हमने कायद का पाकिस्तान बनाना. 75 सालों तक ये कायद का पाकिस्तान नहीं बना सके हम, लेकिन कायद से इतनी मोहब्बत है कि उसकी तस्वीर पीछे लगाते हैं. तो अगर उनकी तस्वीर पीछे लगा सकते हैं, तो उनके कॉल पे अमल क्यों नहीं करते? बट बात यह है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर सिर्फ रेफरेंस के तौर पे लगाई जाती है. मुख्तार मसूद ने जो उनके लिए बात लिखी थी आवाज़ दोस्त में, वो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई थी. वो लिखते हैं कि अजीब शख्स था वो, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लिख रहे हैं, कहते हैं अजीब शख्स था वो. गैरों ने जाना मगर मान कर नहीं दिया, गैरों ने जाना मगर मान कर नहीं दिया, अपनों ने माना मगर जान कर नहीं दिया. और ये बात सही. आप इमेजिन करें, खुदा न करे, 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 खुदा ना करे, खुदा ना करे कि हम किसी जंग की तरफ चले जाएं, फर्ज कीजिए, तो आपके ख्याल में क्या होगा? आई एम नॉट सेइंग कि हम हारेंगे या जीतेंगे, ये छोड़िए, ये छोड़िए, वहां मुझे यकीन है इस बात का कि हम जीतेंगे, जंग हम जीत जाएंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है. अगर ऐसा नहीं होता तो हम पे अब तक हमला हो चुका होता. इस बात का आप जो भी मतलब निकालना चाहें वो आपकी मर्जी है, मैं ना तो यहां किसी के लिए बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि पाकिस्तान किसी के लिए भी ना तो तरने वाला है, और पाकिस्तान हमेशा अपने दुश्मन के दांत खट्टे करने की सलाहियत रखता है और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है. ऐसा नहीं है तो हमें उधर मुझे पूरा यकीन है कि हम बेहतर करेंगे. अब हमारी सरहदों को कम से कम कोई खतरा नहीं है. बट हियर इज माय क्वेश्चन, ये मेरा सवाल है, क्या जंग हम अफोर्ड कर सकते हैं इकोनॉमिकली? ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है. और जब तक हम अपनी इकोनॉमिक्स को ठीक नहीं करेंगे, अव्वल तो जंग होनी ही नहीं चाहिए, और बदकिस्मती से खुदा ना करे, 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 कोई मुल्क इसमें झुक जाता है,
तो फैसला हार जीत का तो बहुत बाद में होता है. जिंदगी तबाह हो जाती है, इंसानियत हार जाती है, खत्म हो जाती है. मैंने ये क्यों कहा है, अब इसका दूसरा पहलू है. सवाल ये है कि क्या हमारे जो आम पाकिस्तानी बाशिंदे हैं, क्या उनके पास उनकी दस्तरस में जिंदगी की जरूरी चीजें, हर चीज नहीं जरूरी चीजें, क्या उनकी दस्तरस में है? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. बस ये याद रखिए कि हम इसलिए जीते हैं क्योंकि जीना बहुत जरूरी है. वरना एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास जिंदगी की बुनियादी सहूलतें नहीं है. कर्जों का अंबार है, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है. तालीम कहीं है, अक्सर जगहों पे नहीं है. हर वो बच्चा जो पाकिस्तान में पैदा होता है, कहीं ना कहीं उस पर कर्ज का बोझ होता है. इससे कैसे निकला जाए? निकल तो सकते हैं, पर क्या हम वाकई निकलना चाहते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमने अब तक यह डिसाइड नहीं किया कि हम हैं कौन. हम वो हैं जो लीडर्स के पीछे भागेंगे, हम वो हैं जो हर सुनी सुनाई बात को यकीन करेंगे, हम वो हैं जो जिंदगी में इसलिए किसी को पसंद करेंगे कि वो बड़ी खूबसूरत अंग्रेजी या उर्दू बोलता है, या वो बड़ा ललकार के बात करता है, या वो बड़े मजाहिया अंदाज में बात करता है, या वो इसलिए कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा. क्या हम एक जमात के लोगों को इसलिए वोट देंगे क्योंकि हमारे लीडर ने कहा है, या हम उन लोगों को सामने लाना चाहते हैं जो दर हकीकत कैपेबल है? और याद रखिएगा, डेमोक्रेसी एक दिन में नहीं आएगी. इसको जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं. जैसे खुशी एक प्रैक्टिस है ना, हैप्पीनेस इज प्रैक्टिस. ये आती है आते आते. खुशी की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, खुश रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है. इसी तरह से डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस होती है. सवाल यह है कि हम ये प्रैक्टिस करते हैं? नहीं करते. इसलिए नहीं कि हमारे सियासतदान ये कहते हैं या हमारी एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, हमारी बात कर रहा हूं. हम खुद भी डेमोक्रेटिक नहीं है. यू नो व्हाई? क्योंकि डेमोक्रेसी का सबसे पहला उसूल यह है कि आप बर्दाश्त पैदा करें, टॉलरेंस पैदा करें. क्या हमारे माशरे में आपको कोई टॉलरेंस नजर आती है? सोशल मीडिया देखें, एक अखाड़ा है. टेलीविजन देखें, एक अखाड़ा है. आम जिंदगी में गलियों में चलते फिरते देख लें, अखाड़ा है. हमें कोई बात पसंद नहीं आई तो हमारा पहला जुमला यह होता है, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा. इस किस्म के लगव जुमले मैंने बड़े सुने. तुम मुझे जानते नहीं हो, या मैं तो तुम्हें नहीं जानता. तुम अपने आप को जानते हो ना? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो लोग जो ये जुमले बोल रहे हैं वो दरअसल खुद से भी वाकिफ नहीं है. और अगर तुम अपने आप को नहीं जानते तो तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम किसी दूसरे को नहीं जान सकोगे.
ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक. क्या हालात, सब ठीक ठाक? आई एम ओके. क्या कर रहे हो, छोड़ दो. सीरियसली, लीव इट. एक सेकंड रुकिए, मैं जरा कुछ चीजें देख लूं, फिर इसके बाद करते हैं बात. हाँ जी, हो गया. सो दैट्स व्हाट इट इज. We'll see कि क्या होता है, बट यही सूरत हाल है. अभी मेरे पास एक और मैसेज आया जिसके अंदर किसी ने मुझे कहा कि साहिब भाई, आज तो बहुत डिफरेंट शो है. या ऐसे हमने हजारों शोज किए, बट नो वन टॉक्स अबाउट देम. हम जिन शोज के बारे में, एक्चुअली हम भी तो डिसाइड नहीं कर पाते ना. जब भी मैं ऐसी कोई बात करता हूँ तो कोई भी नहीं, चार लोग भी नहीं हुए बोलते कि यार बहुत अच्छा शो था आपका, ये आपने बहुत अच्छा शो किया है. कोई बात नहीं करते. But when you talk about, it's easier to, you know, अजीब किस्म के हमारे notions होते हैं, हम समझते कुछ नहीं हैं, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं. मतलब मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लगता है जब पीपल जाने दें. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट यू नो वी हैव टू रियलाइज समथिंग कि कल परसों तरसों यू नो हमें जब भी वक्त मिलता है हम आई डोंट नो फॉर सम ऑड रीजन हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें जल्दी है. सच बता रहा हूँ. इट्स नॉट के मतलब हमें जल्दी होती है, बट हमने डिसाइड किया हुआ. मैंने कल परसों तरसों को क्यों कहा? ये लाइफ है हमारी. कल परसों तरसों से मुरादी है योर लाइफ इटसेल्फ, चाहे वो आज है, कल है, परसों है, तरसों है. वी आर ऑलवेज इन अ रश. क्वेश्चन इज व्हाई. ऐसा क्या है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं? हमने क्या डिस्कवर कर लेना? हमने तो अपने आप को अभी तक डिस्कवर नहीं किया. तो जब हमने अपने आप को डिस्कवर नहीं किया तो फिर हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? इट्स ऑल अप टू यू. इफ यू गाइस थिंक कि आपने अपने आप को डिस्कवर कर लिया है और मैं जो कह रहा हूं पता नहीं क्या बोलते रहते हैं भाई, तो इट्स ओके. इट्स योर प्रोग्रेस. एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर लाइफ, इट्स नॉट माइन. अगर आपको मैं इसलिए पसंद नहीं क्योंकि सच कभी कभी कड़वा हो जाता है और उस कड़वाहट को अगर हम निगल लें तो शायद हम जिंदगी की बहुत सारी चीजों को सही कर लेते हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कड़वाहट आपने नहीं निकलनी तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. यू डोंट हैव टू लिसन टू माय शो. आप मेरा शो मत सुनिए जब भी मैं ऐसे शोज करूं. आप तब आया कीजिए जब मैं वो वाले दूसरे वाले शोज कर रहा हूं. डू यू रियलाइज दैट अगर एक आदमी डिप्रेशन में हो और वो मर जाए, हाउ पैथेटिक दैट इज फॉर द पीपल अराउंड. इट्स नॉट के हमने उसके हेल्प करने की कोशिश की. एक तो उसने खुद हेल्प करने की कोशिश नहीं की, दूसरा हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो डिप्रेशन में. एंड व्हेन ही इज गॉन एवरीवन वांट्स टू टॉक अबाउट इट. एवरीवन द ग्रुप दैट आई हैव नोन, जिनको मैं जानता हूं, सारे लगे हुए, सब लगे हुए. ओहो बहुत अच्छा था यार वो, ये हो गया ये. तो हमारा एक दोस्त हुआ करता था मीडिया का, एक चैनल के लिए काम करता था एंड वो सब्सटेंस अब्यूज के अंदर पड़ गया. कोर्स बहुत सारा नशा वो करने लगा. स्लोली ग्रेजुअली उसकी सेहत जो है वो डिटीरिएट करने लगी और फिर उसके बाद जाहिर उसकी बीवी से उसकी नाचाकियां हो गईं, बच्चे छोड़ गए, बीवी छोड़ गई. एंड देन आहिस्ता 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 उसको सबने बहुत समझाया कि तुम नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, देखो यार ये सही नहीं है, ये यूं से. डिप्रेशन होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया. एंड एक दिन ही डाइड. लेकिन आप जानते हैं उसकी एक बहुत बड़ी लीडिंग कॉज क्या थी उसकी डेथ की? कसमापुरसी. जो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ना, इसको लोग समझते नहीं है आज के दौर में, तो बिल्कुल नहीं समझते. आज के दौर में हम ये समझते हैं हम बकवास कर रहे हैं, पैसे के बगैर जिया जा सकता है. मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जिया जा सकता, लेकिन फिर सब लोगों को मुश्तरक तौर पे मिल के कोशिश करनी चाहिए ना. अगर किसी शख्स के पास इफ समवन इज फॉलन ऑन बैड टाइम्स, तो फिर सबको कोशिश करनी चाहिए. सब उसको ये एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारा वक्त अच्छा नहीं रहा. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद हिम. मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे मीडिया के लोग जो मुझे सुन रहे होंगे उन्हें यह नाम पता है, उनको मालूम है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. लेकिन वो लड़का, उसने हमारे साथ काम किया था, मेरे साथ काम किया था. मैं जिस जमाने में जियो में था तो वो मेरे साथ थे उस जमाने में. ही वाज वेरी नाइस. उसके बाद फिर मैं मूव हो गया, यहाँ से चला गया. जब आया तो भी बिजी, तो हमारी मुलाकात नहीं हुई. फिर तकरीबन 8-9 साल के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई, तो जो कुछ मैं कर सकता था उनके लिए मैंने वो किया. बट बाय देन इट वाज टू लेट एंड वन डे ही जस्ट पास्ड अवे. और वो सफा हस्ती से ऐसे मिट गया जैसे वो कभी था ही नहीं. सो हियर इज माय क्वेश्चन, उसका जिम्मेदार कौन था? वो तो था ही था, वो तो बिल्कुल था. लेकिन वो चैनल्स जिसके लिए वो काम करता रहा, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पैसा टाइम पे दें? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अगर किसी से काम लेते हैं तो उनका पैसा भी दें? ये कौन सा जराए इब्लाग है जो अजाने तो दिखा देता है लेकिन जो अजानों पर नमाज पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें ही तकलीफ दे रहा है? ये तलकीन तो कर देता है कि हमें ऐसा होना चाहिए, पाकिस्तान के नारे तो लगवाता है, बट ये कौन सा जराए इब्लाग है
जो इंसानों की मजबूरियों को समझ नहीं पाता, ये कौन सा मीडिया है जहां ये अलाउड है कि आप सैलरीज ना दो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो छोड़ के जाना चाहता है वो चला जाए। ये कौन लोग हैं? बातें इनकी इतनी नॉवल होती हैं कि आप सर पकड़ के बैठ जाएं, आपको इन पे फरिश्तों का गुमान होने लगे। आप ये बोले नाउजुबिल्ला मंजालिक के ये पता नहीं कोई खास लोग हैं, और जब आप इनको करीब से देखें तो आपको लगता है कि यार दिस इज रियली रॉन्ग। किसी का मरना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग रोज ही मरते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो वो कैसे मर गया, और उसके पीछे जो लोग बचे हैं कम से कम थोड़े अरसे के लिए उनका क्या होगा। मैंने तो ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं कि जहां एक शख्स मर गया है तो फिर जोर जबरदस्ती उसकी तनख्वाह के पैसे लिए गए। खैर, इट्स बैड, इट्स रियली बैड। और ये मिनहसुल कौम हमारे रवैये, यहां हम, खैर जाने दीजिए, कभी सोच के देखिएगा कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग आबाद हैं, बहुत सारे। आई एम हेटिंग माई सेल्फ फॉर इवन यूजिंग दिस, बट आई एम गोइंग टू यूज दिस टर्म। बहुत सारे तबकाती फर्क हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ मैं अपनी पॉडकास्ट के लिए छोड़ता हूं, कभी कभी, अभी नहीं कह रहा कि मैं शुरू करूंगा, बिकॉज अक्सर मैंने सोचा मैं शुरू करूंगा, लेकिन कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं ना जिंदगी के जावियों पे, जिंदगी के उसूलों पे, खुद जिंदगी पे कुछ पॉडकास्ट शुरू करूं। क्या पता कुछ तब्दील हो जाए, वैसे तो नहीं होगा क्योंकि हमारे यहां रस्तू से सभी हैं ना। किसी ने मुझसे कहा कि लोगों को हर चीज में ना तनकीद करनी है। मुझसे कहा कि आप जवाब क्यों नहीं देते उनके उस बातों का जो वो आपके किसी इंटरव्यू के नीचे लिख देते हैं एंड ऑल दैट। मेरे पास उन बातों का कोई जवाब नहीं है, मैं दूसरों के कॉम्प्लेक्सेस का जिम्मेदार नहीं हो सकता। आप खुद से अगर किसी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हैं और आप मेरी किसी छोटी सी कामयाबी को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं और आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं मुझे या मेरी बात को, या आपको किसी वजह से मेरी शक्ल या मेरी अकल या मेरी बातें गवारा नहीं है, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं, आप खुद हैं। और आपको मैं क्या जवाब दूं? आपके लिए इतना काफी है कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, यही आपकी हकीकत है। आपके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ऑलराइट जी, हसन भाई मेरे पास है इस वक्त यहाँ पे, ये आ गए आज, मछली लेके आए ना आप?
जी मछली लेके आया।
क्या बात है हसन भाई, कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह।
सर ये बताइए, करते क्या हैं आप? पूरा नाम बताइए अपना।
मोहम्मद हसन।
मोहम्मद हसन, माइक में हाँ।
मोहम्मद हसन।
वेरी नाइस मोहम्मद भाई, वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताइए करते क्या हैं आप?
मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, फारिग हूँ।
फारिग हैं? और ये कौन, दोनों बच्चे हैं आपके?
जी जी जी।
आप बड़े बेटे और आप छोटे बेटे, क्या करते हैं आप? अबे मछली का तो काम कर, तो पढ़ते नहीं है आप? भी नहीं पढ़ते, आप भी नहीं पढ़ते?
आपको बताया ना, वो बेतुल्ला को देख के दुआ किया था, बच्चा अभी टिकटॉक पैसा कमा रहा अल्हम्दुलिल्लाह।
जबरदस्त, कितना पैसा बना रहे हो? अच्छे पैसे बना रहे हो,
10,000-12,000 मिल जाता है।
वेरी नाइस, पर डे।
मैं इसलिए आप,
क्या बात है यार,
उसी से मिलने के लिए आया हूँ।
सर सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैठ जाओ बेटा।
मैंने बोला रमजान में ऐसा कुछ चांस हो ना, दीनी बातें मैं भी करूँ।
हाँ जरूर करना। अच्छा ये बताएं नाम क्या है इनके दोनों के?
ये मोहम्मद करीम, मोहम्मद कासिम।
मोहम्मद करीम और मोहम्मद कासिम, इनमें से किसकी शादी हुई है?
ये इसका शादी हुआ।
तुम्हारा हुआ हुआ शादी? कितने बच्चे हैं तुम्हारे?
एक बेटी है माशाल्लाह।
माशाल्लाह, क्या नाम है उसका?
आरजू।
आरजू, वेरी नाइस वेरी नाइस। शादी पसंद की थी या मतलब?
पसंद की थी।
माइक में बोलना।
पसंद की थी।
ओके पसंद की थी। कितनी क्लासें पढ़ी हैं तुमने?
सेवन क्लास।
क्यों फिर छोड़ क्यों दिया माइक?
ये मेरे परेशानी की वजह से है ना, मैं आंखों से।
अच्छा आपके परेशानी, अच्छा ओके लेकिन कोई बात नहीं, आपके, आप आरजू को तो पढ़ाओगे ना
इंशाल्लाह?
पक्की बात है ना?
बिल्कुल।
हाँ
हाँ इनको थोड़ा खोल, और बेटा आपको जोर से बोलना पड़ेगा।
जी जी।
अच्छा वो नहीं, मेरे ख्याल में आ नहीं रहा है सही से, प्रॉपर आ नहीं रहा है, थोड़ा जोर से बोलो।
इंशाल्लाह जरूर पढ़ाऊंगा।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हसन भाई आपकी शादी को कितने साल हो गए?
मेरा 1994 तकरीबन।
1994 में हुआ, तकरीबन क्या मतलब?
अंदाजा बता रहा हूँ, मिस ना हो जाए।
बेगम सुन तो नहीं रही?
बेगम भी सुन रहा है।
ओए मसला हो जाएगा आज, आज बड़ा मसला होने वाला है आपके घर पे। बड़ा मसला हो जाएगा। तो 1994 के अंदर आपकी शादी हुई थी?
जी।
ओके, और कितने बच्चे हैं माशाल्लाह?
ये दो बच्चे हैं, दो लड़की है।
और दोनों की शादी होंगी? लड़कियों की?
लड़कियों का शादी नहीं हुआ अभी।
अभी नहीं हुआ, इंशाल्लाह हो जाएगी।
हो जाएगा इंशाल्लाह,
इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये बताएं आपको क्या शौक किस चीज का था, बड़े होके क्या बनना था आपने, आपका बचपन कैसा था?
मेरे को बड़ा होके बस बड़ा पैसे वाला बनने का शौक था।
ओके।
लेकिन अल्लाह ने जितना दिया इससे मैं मर के मेरा नस्ल भी खा सकते हैं।
वाकई?
बस
क्या बात है, जबरदस्त हो गया यार, जबरदस्त हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
अभी अल्लाह ने आपका आपका वो आपके मेरे तीन बात दिल में लगा। आपने बोला जिसके पास टैलेंट है ना वो टैलेंट लेके कब्र में नहीं जाना, बहुत पिटाई होगा। दूसरा बात आपका बेतुल्ला को देख के जो दुआ बोला ना, मैंने 100% से भी ज्यादा मेरा कारामद हुआ। और तीसरा ये कि आपने जो जन्नत का बोला ना हूरों का,
मैंने क्या बोला जन्नत का हूरों का, मुझे बता तो दे।
आपने किसको बोला था, मेरे ख्याल महमूद को या किसी को बोला था?
वो तो मजाक कर रहे होंगे हम। महमूद को वैसे भी जमीन पे भी हूरे बहुत पसंद है महमूद को।
वो महमूद का वालदा बीमार था, मैंने ताज्जुद में दुआ किया, फिर दूसरा दिन आपने बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह शफा हो गया।
नहीं लेकिन वो हाँ, लेकिन महमूद की वालदा भी इस दुनिया में नहीं।
इंशाल्लाह मैं सूरतुल यासीन पढ़ के उनके लिए साले सवाब भेजूंगा।
बिल्कुल 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 बिल्कुल। खैर तो मुझे बताएं आप
जी
के आगे का प्लान क्या है आपके, क्या करना चाहते हैं?
आगे का प्लान मैं ये चाहता हूँ मेरे को कोई ऐसा जरिया मिले फ्री में, फी सबीलिल्लाह मैं बयान करूँ। उस दिन मैं ऑनियर नंबर दिया था ना, 50 बंदों ने फोन किया, मैंने सबने बोला पैसे चाहिए, नोट चाहिए, क्या चाहिए, मैंने बोला कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बयान करता हूँ, मेरे को टाइम टाइम फोन करना, मैं बयान सुनाता हूँ।
ओके, और वो आपने किया?
हाँ मैंने यही किया।
रमजान में करेंगे ना? रमजान में
इंशाल्लाह, रमजान में करूंगा।
हाँ डेफिनेटली आप बयान कीजिएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ऐसी पूछ रहा हूँ।
जी जी।
थोड़ा इससे पहले परेशानी थी आपको ना?
बहुत परेशानी थी।
तो गुजारा मुश्किल होता था?
बहुत मुश्किल होता था। ये छोटा बेटा 800-900 रुपया कमा रहा था, उसका भी काम नहीं था, तो मैं इतना परेशान था। फिर मैंने बेतुल्ला को देख के आपका बात सुन के, बेतुल्ला को देख के दुआ किया।
अच्छा ये मेरी बात नहीं है, मैं पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं, ये मेरी बात नहीं है।
जी जी।
ये एक हदीस है जिसमें कहा जाता है, और वो उम्रे के लिए कही गई है, कि जब उम्रे के दौरान आप बैतुल्ला को देखें
जी जी,
और आप उसकी ज्यारत करें, तो आप जो दुआ मांगते हैं वो कबूल हो जाती है। अच्छा मैंने इसको अपनी जिंदगी के अंदर
जी जी
हमेशा रखा है, मेरे मोबाइल फोन पे भी इमेज जो है वो उस पे मैं जाता हूँ, और बैतुल्ला की तस्वीर होती है और मैं उसे देख के दुआ मांगता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुदा के अलावा किसी से नहीं मांग सकता। मैंने जिंदगी में कभी खुदा के अलावा किसी से नहीं मांगा, तो मैं बस और जाहिर है चूंकि ये नबी का फरमान है तो ये वैसे ही ठीक होता है, वो बिल्कुल इसमें कोई मतलब बिल्कुल दुरुस्त होता है। खैर ये बड़ी अच्छी बात है, आप ये बात जो कह रहे हैं बड़ी बड़ी सही बात है। अच्छा अब आ जाते हैं, आपका सबसे क्लोज दोस्त कौन है, सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपका?
मेरा ना, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, उसका नाम है जाफर।
जाफर कहाँ पर रहता है? जाफर
वो भी हमारे इलाके में।
आपके इलाके में?
जी।
तो जाफर और आप लोग शाम को मिलते हो?
हाँ मुलाकात होता है, मस्जिद में मुलाकात होता है, मोहल्ले में मुलाकात होता है।
मोहल्ले में आप लोग चाय वाय पीते हो बाहर बैठ के?
नहीं हम चाय बहुत कम पीते हैं।
आप चाय बहुत कम पीते हैं?
बहुत कम पीते हैं।
अच्छा आज मछली बनाई किसने, सच्ची बताना?
ये मछली ये बेटे ने फिशरी से मछली से वो लांच से लिया।
हाँ।
बगैर बर्फ का?
बगैर
बगैर बर्फ का?
बगैर बर्फ का
बिल्कुल ताजी
ताजा। अच्छा, बिल्कुल ताजा। ये बोलना मैं परेशान हो गया,
बर्फ नहीं डाला ना उसने। अच्छा। एक तो 25 दिन 50 दिन वाला होता है।
अच्छा ये अभी नया नया है,
ये समझो कल रात को मारा सुबह बेचा।
अच्छा ओके।
वो ला के इसने साफ करके पेट साफ करके फ्रिज में रखा मेरा घर में।
ओके।
फिर लालू के 10 नंबर में ले गया, वहाँ से फ्राई करके ला रहा है।
अरे वाह क्या बात है, क्या बात है।
साहिर भाई ने साहिर भाई को ये,
अरे सर थैंक यू बहुत शुक्रिया, आपको ये करना नहीं था लेकिन थैंक यू वेरी मच।
नहीं ये तो मैंने खुशी से किया ना।
मालूम है। अच्छा ऐसे ये बताएं, जाहिर है आपने अपने टाइम तो गुजारा है, बिजली वगैरह आती है आपके इलाके में?
हाँ बिजली टाइट है।
टाइट है?
हाँ
मतलब कुछ मसला नहीं है बिजली का?
5-6 घंटा नहीं होता, बाकी 24 घंटे में 18 घंटा होता है।
18 घंटे? 5-6 घंटे कौन से होते हैं?
ये समझो ये 9 बजे जाता है, 10:30 बजे आ जाता है।
अच्छा
पूरा रात होता है?
पूरा रात होता है।
सुबह 8 बजे
फिर तो अच्छा है। और पानी?
पानी नहीं है, पानी हम टैंकर खरीदते हैं, मसला नहीं है।
पानी टैंकर खरीदते हैं तो टैंकर कितने का मिलता है?
3,500।
आप तो खरीद लेते हैं लेकिन वो लोग जो खरीद नहीं सकते उनके लिए तो मसला
उसके लिए बड़ी परेशानी है। एक एक डब्बा लेके हमारे घर में आज भी आया था, बोला 2 डब्बा पानी दे दो। छोटा वाला बेटे बोला 10 रुपया लूंगा, मैंने बोला 1 रुपया भी नहीं ले।
ओके, नहीं नहीं सही बात है। क्यों?
मैं बोला गरीब है, जब आया ना मोहताज है।
और गैस आती है?
गैस भी नहीं आ रहा अभी।
गैस भी नहीं आ रहा?
हाँ, सिलेंडर
सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं
जी।
तो पानी नहीं है, गैस नहीं है?
गैस नहीं है।
और सिलेंडर कितने का आता है?
सिलेंडर आता है 300-280 रुपया का।
और ये कितने दिन चलता है?
ये समझो 2-3 दिन 4 दिन चलता है।
2-3 दिन चले, 3 दिन अगर चलता है तो फिर उसके बाद दूसरा लेना पड़ता है?
नहीं, ऐसा है ना, 2-4 किलो भर लिया
हाँ,
तो उससे 10-15 दिन चले जाता है।
अच्छा, ओके ओके ओके। सिलेंडर लेके दो नहीं, लेकिन फिर वो कितने का भरा जाता है? 300 रुपए का भरा जाता है।
1 किलो 300 का,
तो
5 किलो 1500 का, 15 दिन चले जाता है।
5 किलो 1500 का और वो 15 दिन चलता है
जी जी।
ओके ओके, तो ये बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। 5 किलो 1500 का
जी,
तो अगर कोई शख्स 30-40 हज़ार रुपए बना रहा है तो उसका गुजारा हो जाएगा?
हो जाएगा।
कैसे हो जाएगा?
वही ना,
मुश्किलात से होगा ना। अगर अगर आपके 2-3 बच्चे हैं आपके, और आपके माँ बाप हैं, और आपकी बीवी है, और आप खुद हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना गुजारा।
बहुत मुश्किल हो जाएगा।
अच्छा, महंगाई तुम्हें लगती है? तुम तो पैसा भी बना रहे हो, तुम महंगाई तुम्हें लगती है?
नहीं, मुझे महंगाई नहीं लगता।
नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ।
जो वहाँ पे गरीब है, जो दिन में पूरा दिन मेहनत करके 1,000-1,500 रुपए कमाते, उनको बहुत मुश्किल से गुजरना
होता है। स्कूल की फीसें देनी होती है, वो नहीं दे पाते। जाहिर है बच्चों के और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं।
रेंट पे रहते हैं उनके लिए और ज्यादा परेशानी है, क्योंकि 10-15 हज़ार खाली रेंट पे देना होता है महीने।
तो ये तमाम चीजें हैं। चलो चलो, इंशाल्लाह अब आप लोगों से रमजान में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत मेहरबानी। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑफ कोर्स हसन भाई। और हसन भाई ने मतलब आपको बता ही दिया है कि वो क्या करते हैं, और हसन भाई से मुलाकात हम रमजान में दोबारा करेंगे। आज का शो थोड़ा सा डिफरेंट था। आई होप एंड प्रे कि आपको पसंद आया हो। मैं इसी कवाली को लगा देता हूँ, आप सुन लीजिए इसको, मुझे इजाजत दीजिए। जिंदगी बखैर, कल मुलाकात होगी। लेकिन याद रखिए, दूसरों को जानने की जरूर कोशिश कीजिए, लेकिन सबसे पहले खुद को जानिए। अगर आप खुद को जान लेंगे तो दूसरों को समझना शुरू कर देंगे। वरना यकीन जानिए, अगर आप सिर्फ दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे तो याद रखें, ना दूसरों को जान पाएंगे ना कभी खुद को जान पाएंगे। टू डिस्कवर द वर्ल्ड यू नीड टू डिस्कवर योरसेल्फ। दुनिया को खोजने के लिए सबसे पहले खुद को खोजना जरूरी है। अगर आप खुद को नहीं खोज पाएंगे तो दुनिया को भी नहीं खोज सकता। एट द एंड ऑफ द डे तमाम चीजें एक जगह आके रुक जाती हैं, स्टैग्नेंट हो जाती हैं, उन पे जुमूद तारी हो जाता है। आपको पता है वो जगह कौन सी होती है? वो जगह वो होती है जहां आप सीखने के अमल को छोड़ देते हैं, जहां आप सीखना छोड़ देते हैं, लर्न करना छोड़ देते हैं, जहां आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि आपको जिंदगी में सब पता है। याद रखिए, जहां दुनिया का, कायनात का सारा इल्म, सारी साइंस, सारी इंजीनियरिंग, सारी टेक्नोलॉजी खत्म होती है, दैट्स वेयर गॉड बिगिंस। वहीं से खुदा शुरू होता है। सो द अल्टीमेट डिवाइन इज गॉड, नथिंग एल्स। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योरसेल्फ, योर लाइफ विल चेंज।